हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित करें, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज आपको अनुवाद शिक्षण के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अनुवाद है क्या। आप जानते हैं कि दिनों दिन व्यक्ति के अंदर जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, तो पढ़ने की इस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, इस प्रवृत्ति के विकास के लिए दुनिया के तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कि हम जब नहीं पढ़ पाते तो हमें लगता है कि अगर इसका अनुवाद मिल जाता तो मज़ा आ जाता, तो हम अच्छे से पढ़ते। इसीलिए इन अनुवादित ग्रंथों का विशेष महत्व बढ़ा। साहित्य की यह अमूल्य निधि है। कुछ साहित्यिक कृतियाँ तो इतनी बेजोड़ हैं, इतनी अच्छी हैं कि संसार के समस्त भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है और पाठक उसको पढ़ करके आनंद विभोर हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे रामायण है, रामायण को अगर पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ करके कितनी सुखानुभूति होती है। तो जो रामायण है और इस तरह के अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, गीतांजलि इत्यादि, इनका तमाम भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी के द्वारा हम भावनात्मक व राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी स्थापित कर सकते हैं। मातृभाषा शिक्षण में जो प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर पर है, इसमें अनुवादित पुस्तकों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती रहती है। अनुवादित ग्रंथों के अभाव में विद्यार्थियों को विदेशी भाषा की पुस्तकें पढ़ने पड़ती हैं। आप भी देखते हैं कभी अच्छे अच्छे मैटर आपको जब नहीं मिलते तो आपको विदेशी लेखकों की पुस्तकें उन्हीं की भाषा में पढ़नी पड़ती है, तो हम बड़ी मुश्किल से उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं, अनुवादित कर पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुवाद शिक्षण कितना महत्वपूर्ण है। अब आइए बढ़ते हैं आगे कि अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। मातृभाषा शिक्षण के अंतर्गत यदि मैं आपको बहुत ही फॉर्मल औपचारिक तरीके से बताऊं, तो सबसे पहली बात आती है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अन्य भाषाओं के मूल ग्रंथों का अनुवाद करके अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध बना सकें। दूसरी बात, विद्यार्थियों को अपनी भाषा के मूल ग्रंथों का संसार की अन्य भाषाओं में अनुवाद करने योग्य बनाना, जिससे वे अपने साहित्य से संसार को अवगत करा सकें, उनका प्रचार प्रसार कर सकें। तीसरी बात आती है कि विद्यार्थियों को अनुवादित ग्रंथों के द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य और उनका शैलियों से परिचित प्राप्त कराना, जिससे वो विभिन्न शैलियों से परिचय प्राप्त करके और उससे आनंदानुभूति कर सकेंगे। तो ये तो हो गया आपका अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य। उद्देश्य के बाद हम चलते हैं कि अनुवाद शिक्षण की शैलियाँ क्या क्या हैं। अनुवाद शिक्षण की मुख्यतः तीन शैलियाँ हैं। सबसे पहले आपका है शब्दशः अनुवाद करना, जिसमें वैसे का वैसा हम शब्द का अनुवाद कर देते हैं। कभी कभी होता भी है, क्लास में आप पूछते भी हैं मुझसे कि मैडम इसका दूसरा अर्थ क्या होगा, तो जब मैं शब्दशः दूसरा अर्थ बताती हूँ तो भी आपको समझ में नहीं आता। कारण कि शब्दशः अनुवाद थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो वहाँ पे हम अनुवाद किए हुई चीज़ों को जब आत्मसात नहीं कर पाते तो वह भावानुभूति हमारे अंदर नहीं हो पाती। दूसरा आपका आता है छायानुवाद। छायानुवाद मतलब उससे मिलता जुलता किसी दूसरे तरह का अनुवाद करना छायानुवाद कहलाता है। तो छायानुवाद में हम शब्दों पर बल ना दे करके मूल भावों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। इसे अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता, बल्कि इससे मूल भाव तो स्पष्ट हो जाते हैं लेकिन शैली का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तीसरे नंबर पे आपका आता है भावानुवाद। भावानुवाद अर्थात भावों के अनुसार अनुवाद करना। जब हम किसी को कोई चीज़ समझाने चलते हैं तो अगर व्यक्ति के अंदर वो अनुभूति होती है, वो भावनाएं होती हैं, तभी वो उन चीज को समझ सकता है। तो यदि भावानुवाद किया जाएगा तो भावानुवाद करने में वो उसी तरीके से फीलिंग करेगा, फील करेगा तभी उसको बात समझ में आएगी। तो अनुवाद शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है क्योंकि इसमें भाव तथा शैली दोनों का ही निर्वाह अच्छे तरीके से होता है। इसमें मूल रचना के भावों और शैली दोनों को ज्यों का त्यों अनुवादित भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। अनुवाद जब हम करते हैं तो मातृभाषा के किसी शब्द का विदेशी भाषा में पर्याय खोजना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि प्रत्येक भाषा भाषियों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं और इसमें विशिष्ट भौतिक तथा आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। तो उनके हिसाब से हम विदेशों व हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए जो लोग अनुवाद पद्धति का सहारा लेते हैं उस तरीके से भी अनुवाद बच्चे को बता सकते हैं। मैं आपको डायग्राम भेज रही हूँ अनुवाद शिक्षण की जो शैलियाँ हैं उसका। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे कि अनुवाद शिक्षण की प्रणालियाँ क्या क्या हैं। अनुवाद शिक्षण की प्रणालियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ये सभी स्तरों पर बराबर लागू होंगी। जैसे सबसे पहले आपकी आती है पुस्तक प्रणाली। पुस्तक प्रणाली जैसा कि आप समझते हैं कि इसमें निर्धारित अनुवाद पुस्तकों के द्वारा ही पुस्तकों के अनुसार ही करवाया जाता है। इन पुस्तकों में वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार विभिन्न अध्यायों में व्यवस्थित रहते हैं और दुभाषीय प्रणाली का प्रयोग करके माध्यमिक स्तर में अभ्यासार्थ कार्य करवाया जाता है। जब विद्यार्थी अनुवाद करना जूनियर स्तर से सीख लेता है तब उसको पुस्तक प्रणाली के अंतर्गत अनुवाद करना अत्यंत सरल हो जाता है। दूसरी प्रणाली आपकी आती है दुभाषीय प्रणाली। दुभाषीय प्रणाली का प्रयोग माध्यमिक स्तर में अभ्यासार्थ करवाया जा सकता है। जब विद्यार्थी अनुवाद करना सीख लेता है जूनियर स्तर पर आकर के तो वो उस चीज में आसानी सरलता महसूस करता है। एक व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा है और दूसरा उसका अनुवाद हिंदी में तुरंत तुरंत करता जाए, इसको दुभाषिया प्रणाली कहते हैं। तीसरी प्रणाली आपकी आती है तुलना प्रणाली। तुलना प्रणाली में विद्यार्थियों के सामने आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियमीकरण के आधार पर अन्य वैसे ही वाक्यों का अनुकरण अनुवाद करते हैं। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक प्रणाली है लेकिन इसमें समय कुछ ज़्यादा लगता है। चौथी प्रणाली जो आपने देखी है फिगर में वह प्रणाली जो है आदर्श प्रणाली कहलाती है। आदर्श प्रणाली में हम सभी प्रणालियों का मिक्सअप रखते हैं और इस योग के माध्यम से मिले जुले कार्य को करते हैं और अनुवाद बालक को सिखाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी अनुवाद शिक्षण की प्रणालियाँ। आपकी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अनुवाद शिक्षण के जो नवीन शिक्षण प्रणालियाँ हैं उनका भाषा शिक्षण में क्या योगदान है।